सुर्खियों में
नमस्कार, मैं हूं मनोज पाठक और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर्खियों में। आज इस कार्यक्रम में हम कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर एक पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का संबोधन कई अर्थों में प्रेरणादायी है और उन्होंने कृषि क्षेत्र और रोजगार से संबंधित विविध पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र किस तरह बदल सकता है और इस वेबिनार के माध्यम से जो इनपुट्स मिलेंगे विभिन्न भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के द्वारा, उनका क्या उपयोग होगा, उसकी ओर भी प्रधानमंत्री ने संकेत किया। बहरहाल, कैसा रहा आज का वेबिनार और प्रधानमंत्री ने क्या सब अपने उद्बोधन में कहा, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप दास। संदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो संदीप जी, हम यही समझना चाहेंगे कि यह जो वेबिनार है, अपनी तरह का तीसरा संस्करण, वह मुख्य रूप से किन उद्देश्यों से और इसमें प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से क्या सब बातें रखी?
प्रधानमंत्री जी का जो भाषण उन्होंने था वेबिनार में
जी,
को जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर बस सिर्फ चावल गेहूं अगर ये तो एलाइड सेक्टर का एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो वेबिनार में काफी डिफरेंट सेक्टर के लोग वहां थे, मिनिस्ट्रीज के लोग थे। तो एसेंशियली उनका फोकस ये रहा कि जैसे एलाइड सेक्टर हो, हाई वैल्यू क्रॉप हो, ये सब सेक्टर को कैसे फोकस किया जाए। क्योंकि आप, मैं एक चीज बता रहा था कि भारत का, क्योंकि भारत लास्ट 15 से 20 साल के बाद एक सबसे बड़ा जो चावल प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा गेहूं, वन ऑफ द बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर को उभर कराया है। दूध उत्पादन भी हम लोग सबसे नंबर वन है लास्ट 20 साल से, मोर देन 20 इयर्स। और ये जो एलाइड सेक्टर के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने फोकस डाला, और एक फोकस ये था कि डिजिटल एग्रीकल्चर, जो डिजिटल एग्रीकल्चर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो टेक्नोलॉजी यूज करके जैसे छोटे किसान को कैसे बेनिफिट दिया जाए, उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। हालांकि बजट में भी बहुत रेफरेंस है इस बार हाई वैल्यू क्रॉप के लिए कैसे ग्रो किया जाए और कैसे क्रॉप ग्रो करने के अलावा भी एक्सपोर्टेबल कैसे बनाया जाए। उसको मूल उद्देश्य ये है कि फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले, फार्मर्स को ज्यादा इनकम हो, क्योंकि फार्मर्स इनकम बूस्ट करना ये सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर।
श्रोताओं, यहां पर हम सीधे प्रधानमंत्री के संबोधन की ओर आपको ले चलना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया कि गेहूं चावल जैसे जो हमारे मुख्य आहार है, खाद्य आहार है, अब उसके बाद अगला चरण हमारा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, उनकी फसल काटने का, यानी बजट की घोषणाओं का लाभ किस तरह मिल रहा है और आगे कैसे मिलेगा, वह क्या है। तो पहले हम ये जानते हैं कि हाई वैल्यू फसल के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या अपेक्षाएं इस सम्मेलन से हैं।
बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं, खासकर केरल है, तमिलनाडु है, केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है।
संदीप जी, प्रधानमंत्री ने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात की, आपने भी अभी चर्चा की, हम हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से क्या समझें, क्या संदेश देना चाहेंगे?
संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, भारत ऐसा है कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से बहुत डाइवर्स है, यहाँ तरह तरह की चीजें ग्रो होता है। और वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा जो मुद्दा वो हो रहा है कि जैसे मोरिंगा हो गया, जो बहुत सारी चीजें हाई वैल्यू, बड़ा लंबा लिस्ट होता है, क्योंकि एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो बात आता है, क्योंकि हम इस स्टेज में भारत पहुंच गया है कि सीरियल से थोड़ा सिप करने की जरूरत है, चावल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया वैसे करना है, बोथ बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटलिज्म बोथ और फार्मर्स इनकम के एंगल से देखा जाए। ये जो हाई वैल्यू क्रॉप है जिसका एक्सपोर्ट जो बहुत सारे क्रॉप है हाई वैल्यू क्रॉप के अंदर आता है, हाई वैल्यू फ्रूट्स भी है बहुत तरह के, कोमोलम देखे हुए फ्रूट्स जो ड्रैगन फ्रूट्स माना जाता है,
जी, जी।
तो ये सब चीजें बहुत प्राइम मिनिस्टर बहुत सालों से उनका ये फोकस हो रहा है कि ये सब फार्मर्स ग्रो करें। और इसके साथ साथ एक चीज देखा गया कि भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, मतलब भारत इतना बड़ा विशाल देश में इतना पॉल्यूशन होने के बाद भी हम लोग करीब करीब $50 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं
जी
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एलाइड सेक्टर सब मिला के, तो उसको कैसे ग्रोथ दिया जाए, हाई वैल्यू जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो भी एक्सपोर्ट कैसे हो, बहुत सारे अश्वगंधा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट दीज आर ऑल हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्रॉप और बहुत सारे रीजनल स्पेसिफिक बनता है, उसको कैसे फोकस किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वैल्यू चेन मार्केटिंग लिंकेज वो सब चीज के बारे में प्राइम मिनिस्टर का फोकस कर रहा है।
यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि हाई वैल्यू फसल में जो लैब में अनुसंधान हो रहा है यानी लेबोरेटरी में जो प्रयोग होते हैं उनकी तासीर हम देखने लगे हैं कुछ इस अर्थों में कि जैसे सेब माना जाता था कि सिर्फ पहाड़ों पर हो सकता है, उसके लिए एक सर्टेन तापक्रम चाहिए, जबकि अब सेब राजस्थान में भी देखा जा रहा है कि हो रहा है। इसी तरह ड्रैगन फ्रूट की आपने बात की, कैसे जो डिफरेंट आपने क्लाइमेट जोन की बात कही तो वह लैब से चलकर किसानों तक कैसे पहुंच सकेगा, कैसे देखते हैं
सरकार का फोकस, जैसे पायलट प्रोजेक्ट बना के कैसे सरकार का प्रयास रहा है। जो ड्रैगन फ्रूट आप देखोगे लास्ट 4-5 साल में इतना बड़ा उद्योग तो नहीं बोलेगा, इतना बड़ा क्रॉप प्रोडक्शन जो कुछ भी नहीं होता था पहले,
जी जी जी,
तो क्योंकि वो एक हाई वैल्यू क्रॉप है। अभी बहुत सारा जो यहाँ से होगा, जब मोरिंगा का भी एक इंसान देता है, मोरिंगा सजन फली इज ए क्रॉप बेसिकली हम लोग नॉर्मली मिलता है गांव में,
बिल्कुल,
बट
बिल्कुल।
उसका जो मेडिसिनल क्वालिटी एंटी ऑक्सीडेंट वैरायटी उसके वजह से एक मोरिंगा कल्टीवेशन बिकम बिग, तो वो सब चीज को कैसे फोकस किया जाए और एग्रो क्लाइमेटिक जोन को देखते हुए उस क्लाइमेट में क्या हो सकता है और जो साइंस का बैकिंग करके, और जैसे मिलेट मिशन है ये भी इसके साथ लिंक था,
बिल्कुल
मिलेट मिशन का, मिलेट जो 2-3 साल में हम लोग यूनाइटेड नेशन मिलेट ईयर घोषणा किया था 2023 को, वो भी मिलेट का भी कैसे ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो जो क्लाइमेट के साथ मिलके कि उस एरिया में वही क्रॉप हो सकता है उसको, और उसका डिमांड बाहर बहुत ज्यादा है, डिमांड इंटरनली बहुत ज्यादा है, तो फार्मर्स का सीधा सीधा फायदा होगा, उसको कैसे हैंड होल्डिंग किया जाए, कैसे पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, कैसे होल मार्केटिंग सिस्टम उसका बायबैक अरेंजमेंट, ये सब तमाम चीजों में काफी काम हुआ है। इसीलिए फोकस ये रहा है एलाइड सेक्टर और हाई वैल्यू क्रॉप जो कि नेक्स्ट फेज ऑफ अवर ग्रोथ।
श्रोताओं एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मिलेट मिशन की बात की जा रही है वह हमारे आपके भारतीय परिवेश में मोटे अनाज के रूप में पहले से चलन में रहा, लेकिन बाद में ये थोड़ा पिछड़ गया। अब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें ये मोटे अनाज जो कि विषम परिस्थिति में और बहुत कम बारिश में भी हो सकते हैं वह फिर से केंद्र में आ गए हैं और सरकार इन्हीं को बढ़ावा दे रही है, साथ ही अन्य फसलों को जो प्रयोगशालाओं में शोध हो रहे हैं वह आम किसानों तक पहुंच रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तकनीक। तो हम सीधे आपको प्रधानमंत्री के संबोधन की ओर ले चलना चाहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एआई का यूज किस तरह से कृषि क्षेत्र को एक नया आयाम देगा।
सरकार एग्रीस्टेक के जरिए, एग्रीकल्चर के जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है, इसके तहत डिजिटल पहचान यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत विस्तार जैसे एआई आधारित प्लेटफॉर्म रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं, लेकिन साथियों टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है जब सिस्टम उसे अपनाए, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें।
श्रोताओं प्रधानमंत्री के संबोधन को हमने जाना, अब हम समझने का ये प्रयास करेंगे अपने विशेषज्ञ संदीप जी के माध्यम से कि संदीप जी एआई अभी दुनिया भर में इस उभरती हुई तकनीक की चर्चा है, कृषि क्षेत्र में यह किस रूप में काम आने वाला है और खास तौर से जो किसान हैं उनके लिए, साथ ही एग्रो प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो दूसरे इसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उसमें छोटे स्टार्टअप हो सकते हैं, बड़े स्टार्टअप हो सकते हैं, आम आदमी हो सकता है, किस रूप में यह एआई तकनीक और संपूर्ण तकनीक क्षेत्र कृषि को एक नया आयाम देगी, किसानों की आमदनी को आगे ले जाएगी।
इसी दौरान जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का जो भारत गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसी का पार्ट है जो यूज ऑफ एआई, जो अभी विस्तार बजट में रखा गया था उसका नाम है विस्तार। हर फार्मर्स का जो चैलेंजेस होता है क्रॉप ग्रो करने, वो अलग होता है, रीजनल होता है, उसको कैसे उसका साइंटिफिक इनपुट मिले, उसका क्रॉप प्रोग्रेशन में कैसे मिले, सोइंग से लेके उसका हार्वेस्टिंग तक उसको कैसे सपोर्ट मिले, इन टर्म्स से कोई डिजीज तो आया नहीं तो वो कैसे मिल पाएगा इंडिविजुअल लेवल पे। अभी तो जनरली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सब वेदर एडवाइजरी एग्रीकल्चर एडवाइजरी मिलता है, तो एआई के थ्रू अपना रीजनल लैंग्वेज में अभी लॉन्च हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में लॉन्च हुआ है, नॉर्मल फोन में वो कॉल करके, अभी राजस्थान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह ने लॉन्च किया है उसको, एक सिंपल सवाल उसको पूछ सकता है, वहां डेडिकेटेड जो साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर इनपुट एग्रीकल्चर सॉइल साइंटिस्ट वो उसको क्वेरीज को रिप्लाई देंगे एंड ये ग्रेजुअली दूसरे लैंग्वेज में जाएगा। तो एआई यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उसका क्रॉप डेटा लेके और उसको हैंड होल्डिंग पूरा जो क्रॉप का जो प्रोसेस है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का उसमें एआई यूज करके कैसे अच्छे से ऐसा प्रोडक्टिविटी उसको मिले, तो ये हुआ है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जो जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में जो रेफरेंस है, ये अभी करीब 8 से 9 करोड़ फार्मर्स के पास अभी डिजिटल आईडी बन चुका है। वो डिजिटल आईडी का मतलब होता है आपका नाम, आपका कौन सा खेत है, कहाँ पे खेत है, क्या उगाते हैं आप, पूरा डिटेल्स रहता है। वो जो डेटा है वो बहुत हेल्प करता है जानने के लिए एक रीजनल में ये यहाँ फार्मर यहाँ 20 फार्मर है ये करते हैं ग्रो। एग्रीकल्चर क्रेडिट देने में भी वो आसान होता है, क्या ग्रो करता है उसको उसका नीड क्या है। तो अभी डिजिटल आईडी सारा जो रफ एस्टिमेट है करीब 14 करोड़ फार्मर फैमिली है यहाँ, तो सबको देने का जो एम है अभी लैंड ओनिंग फार्मर्स के लिए शुरू हुआ है, सबको कैजुअली लैंड लेस फार्मर की तरफ जाएगा। और ये डिजिटल क्रॉप मिशन वाला इज पार्ट ऑफ द एंटायर जो डिजिटल मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे हम लोग क्रॉप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, सोइंग का जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होता है, क्रॉप डेवलपमेंट का डिफरेंट स्टेज होता है, उसको एआई यूज करके टेक्नोलॉजी यूज करके हम कैसे क्रॉप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच लोगे, फार्मर्स का पूरा प्रोफाइल बन रहा है डिजिटल प्रोफाइल, सो दैट उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसका मार्केटिंग कैपेबिलिटी बढ़े।
श्रोताओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यदि आप किसान परिवार से हैं या आपके संज्ञान में कोई किसान परिवार है तो वहां तक ये सूचना पहुंचाइए कि अनुमानित लगभग 9 करोड़ किसानों की डिजिटल प्रोफाइलिंग हो चुकी है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसान निधि सम्मान योजना है उसके तहत लगभग 4 लाख करोड़ रुपए 10 करोड़ से अधिक किसानों को पहुंचाए जा चुके हैं। यहाँ पर समझना महत्वपूर्ण ये है कि जो आप फसल उगा रहे हैं उसमें आपकी डिजिटल प्रोफाइलिंग काफी सहायक सिद्ध होगी यदि आप एआई का उपयोग करें, इस तकनीक का लाभ उठाएं और अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए तत्पर होकर आगे आएं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं और इससे किसानों और कृषि विकास पर प्रभाव अच्छा पड़ने के आसार है। किस रूप में आकलन कर रहे हैं आप बजट के प्रावधानों से और किसानों को जो लाभ पहुंच रहा है उससे?
पीएम किसान के बारे में जो प्रधानमंत्री ने रेफर किया था वो करीब 6,000 रुपया हर साल 2-3 इंस्टॉलमेंट पे फार्मर्स के खाते में सीधा जाता है
जी।
ये पहला डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम था, तो ये किसान को बहुत हेल्प करता है, जो इनपुट कॉस्ट है उसे कॉस्ट कम करने के लिए, जो लागत आता है उसे कम करने के लिए 6,000 रुपया दिया जाता है। करीब करीब 60,000 से 61,000 करोड़ रुपया हर साल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से लैंड ओनिंग, अभी करंटली लैंड ओनिंग फार्मर्स को दिया जा रहा है, बट ग्रेजुअली बात चल रहा है कि लैंडलेस फार्मर्स जो हमारा टीनेंट फार्मर्स बोलते हैं जो करते हैं उनको भी दिया जाएगा। ये इसका बहुत ज्यादा इसका फोकस रहा है कि बजट में सबसे बड़ा फोकस ये था कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उसको कैसे ग्रो किया जाए, फिशरीज सेक्टर, ये सब सारे सेक्टर के बारे में बताया, जो एलाइड सेक्टर फोकस है। फोकस इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एलाइड सेक्टर, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बाद हम लोग करते हैं तो उसके ऊपर फोकस था बेसिकली एंड यूज टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा का पूरा बजट पर्याप्त सफिशियंट पैसा दिया गया है एंड आई एम जस्ट टू एड यू बेसिकली उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने रेफरेंस किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 1.5% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, जो एमएसपी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मेकेनिज्म है इस सरकार ने कर दिया कि अब वो जब डिसाइड होता है जो 22 एग्रीकल्चर कमोडिटी में डिसाइड हर साल है, वो एमएसपी जो हम लोग बेंचमार्क प्राइस बने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो फार्मर्स को एटलीस्ट 1.5 टाइम मतलब 50% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर मिलेगा
जी।
तो वो एक बहुत बड़ा सफलता है कि सरकार ने एमएसपी को ऐसे कैलकुलेट किया। तो फोकस ये कि जो फार्मर्स इनकम इंप्रूव होता है, तो तमाम स्टडी दिखा गया कि काफी फार्मर्स इंप्रूव हुआ है लास्ट 7 वर्षों में, तो फार्मर्स इनकम इंप्रूवमेंट का सीधा सीधा असर पड़ता है इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट में
जी जी जी,
क्योंकि फार्मिंग सेक्टर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर अभी तक।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि रोजगार देने में हमारे लिए यह रणनीतिक भूमिका निभाता है और आने वाले दिनों में हम इसमें और परिवर्तन देखेंगे। संदीप जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी और बहुमूल्य जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में